ओम शांति। कल हम देख रहे थे वाइब्रेशंस, स्थिति और स्थान के वाइब्रेशंस पावरफुल बनाओ, और दूसरा बोल तो भूल जाते हैं लेकिन वाइब्रेशंस मन और बुद्धि पर छाप छोड़ जाते हैं, और कितना समय उस वाइब्रेशन के वश उस व्यक्ति से व्यवहार में आते हो, चाहे उल्टा हो चाहे सुलटा हो, लेकिन वाइब्रेशन मुश्किल से मिटता है। अव्यक्तवाणी 26 मार्च 1993। आगे, लेकिन यह रूहानी वाइब्रेशन फैलाने के लिए पहले अपने मन में बुद्धि में व्यर्थ वाइब्रेशन समाप्त करेंगे, तब रूहानी वाइब्रेशन फैल सकेंगे। किसी के भी प्रति अगर व्यर्थ वाइब्रेशन धारण किए हुए हैं, तो रूहानी वाइब्रेशन नहीं फैल सकते। व्यर्थ वाइब्रेशन रूहानी वाइब्रेशन के आगे एक क्या बन जाती है, दीवार बन जाती है। चाहे सूर्य कितना भी प्रकाशमय हो, अगर सामने दीवार आ गई, बादल आ गए, तो सूर्य के प्रकाश को प्रज्वलित होने नहीं देते। जो पक्का वाइब्रेशन है वो है दीवार, और जो हल्का वाइब्रेशन है वो है हल्के बादल या काले बादल। तो रूहानी वाइब्रेशंस को आत्माओं तक पहुंचने नहीं देंगे। जैसे सागर में कोई जाल डालकर अनेक चीजों को एक ही बार इकट्ठा कर लेते हैं, या कहां भी अपनी जाल फैलाकर एक समय पर अनेकों को अपना बना लेते हैं, तो वाइब्रेशन एक ही समय पर अनेक आत्माओं को आकर्षित कर सकते हैं। वाइब्रेशन वायुमंडल बनाते हैं। तो आगे की सेवा में वृत्ति द्वारा रूहानी वाइब्रेशन के साथ साथ सेवा करो, तभी फास्ट होगी। वाइब्रेशन और वायुमंडल के साथ साथ वाणी की भी सेवा करेंगे, तो एक ही समय पर अनेक आत्माओं का कल्याण कर सकते हो। अभ्यक्त मुरली 26 मार्च 1993। बाबा कह रहे हैं, लेकिन यह रूहानी वाइब्रेशंस फैलाने के लिए पहले पहले क्या करो, अपने मन में बुद्धि में व्यर्थ वाइब्रेशंस समाप्त करेंगे, तो क्या होगा, तब रूहानी वाइब्रेशन फैला सकेंगे। जब तक व्यर्थ से इनोसेंट नहीं, तब तक सच्चे सच्चे सेंट नहीं बन सकेंगे। व्यर्थ से इनोसेंट जो है वही सच्चे सच्चे सेंट है, आज के मुरली में स्लोगन है। तो रूहानी वाइब्रेशंस फैलाने के लिए पहले क्या करना है, अपने मन में बुद्धि में व्यर्थ वाइब्रेशंस समाप्त करेंगे, तब रूहानी वाइब्रेशन फैला सकेंगे। किसी के भी प्रति यदि व्यर्थ धारण किए हुए हैं, तो रूहानी वाइब्रेशन नहीं फैला सकते। व्यर्थ वाइब्रेशन रूहानी वाइब्रेशन के आगे क्या बन जाती है, दीवार। उदाहरण दिया बाबा ने कौन सा, सूर्य का और बादल। सूर्य यहां है, किरणें निकल रही है, दूसरी ओर धरती है और आत्माएं हैं। सूर्य का प्रकाश तो बहुत तेज है, परंतु यदि बीच में बादल आ गया तो वो किरणें नीचे तक नहीं पहुंच सकेगी, या फिर कोई दीवार हो तो किरणें नहीं पहुंच सकेगी। तो बादल या तो दीवार। व्यर्थ वाइब्रेशन रूहानी वाइब्रेशन के आगे क्या बन जाती है, एक दीवार। चाहे सूर्य कितना भी प्रकाशमय हो, अगर सामने दीवार आ गई, बादल आ गए, तो सूर्य के प्रकाश को प्रज्वलित, बाबा ने शब्द कहा है प्रज्वलित होने नहीं देंगे। जो पक्का वाइब्रेशन है वो है दीवार, और जो हल्का है वो है हल्के बादल या काले बादल। वो रूहानी वाइब्रेशंस को आत्माओं तक पहुंचने ही देंगे। यहां एक दूसरी और एक बात कही है, वाइब्रेशन से क्या होता है, जैसे सागर में कोई जाल डालकर अनेक चीजों को एक ही बार इकट्ठा कर लेते हैं, या कहां भी अपनी जाल फैलाकर एक समय पर अनेकों को अपना बना लेते हैं, तो वाइब्रेशन भी ऐसा काम करता है। क्या करता है, एक ही समय पर अनेक आत्माओं को आकर्षित कर सकते हैं। तो वाइब्रेशन वायुमंडल बनाते हैं। तो आगे की सेवा में वृत्ति द्वारा रूहानी वाइब्रेशन के साथ साथ सेवा करो, तभी फास्ट होगी। वाइब्रेशन और वायुमंडल के साथ साथ पानी की भी सेवा करेंगे तो एक ही समय पर अनेक आत्माओं का कल्याण कर सकते हो। 26 मार्च 1993। एक तरफ है हम और दूसरी तरफ है आत्माएं, एक तरफ है सूर्य और दूसरी तरफ है धरती या धरती की आत्माएं। सूर्य का प्रकाश धरती तक नहीं पहुंच रहा है, कारण है दीवार, कारण है बादल, हल्के बादल, काले बादल। एक तरफ है हम मास्टर ज्ञान सूर्य, दूसरी तरफ है आत्माएं। हमारी सकाश आत्माओं तक नहीं पहुंच रही है, उस बीच है दीवार, बादल। एक बादल बाबा ने यहां पर गिनाया है, कौन सा, व्यर्थ। यदि हमारे मन में व्यर्थ है तो हमारी सकाश, हमारा प्रकाश, हमारे किरणें, हमारे वाइब्रेशंस, हमारे प्रकंपन आत्माओं तक नहीं पहुंच सकते। तो एक तो बताया, एक दीवार, एक बादल, व्यर्थ, बाकी ऐसी कौन कौन से दीवारें हैं, बाकी ऐसे कौन कौन से बादल हैं। अगर वो बीच में आ जाए तो जिनको हम सकाश दे रहे हैं, जिनको हम इमर्ज कर रहे हैं, जिनके मन में करुणा का भाव है और हम सोचते हैं कि उन्हें वाइब्रेशंस दे, वो कौन सी दीवार है, वो कौन से बादल हैं जो बीच में आ जाते हैं, जिसके वजह से हमारे वाइब्रेशंस आत्माओं तक नहीं पहुंच सकते। तो आज हम इन बादलों की लिस्ट निकालेंगे, इन दीवारों की लिस्ट निकालेंगे कि जिनके वजह से जब तक वो है तब तक भले सूर्य कितना भी प्रकाशमय है, कितना भी प्रज्वलित है, परंतु उसकी किरणें नीचे नहीं पहुंच रही है। तो एक है व्यर्थ, व्यर्थ से क्या बनो, इनोसेंट बनो तो क्या बन जाएंगे, सच्चे सच्चे सेंट बन जाएंगे। विकारों को छोड़कर वो कौन कौन से बादल हैं, कौन से, कल एक बादल तो देख लिया था इसी पैराग्राफ का, कल पढ़ रहे थे ना, मिसअंडरस्टैंडिंग, उल्टा इंप्रेशन, उल्टे वाइब्रेशंस। यदि किसी आत्मा का मन में पहले से ही उल्टे इंप्रेशन पड़े हुए, उदाहरण दिया था लक्ष्मण का और राम का, उदाहरण दिया था कुकी थीफ, वो महिला सोच रही है कि वो चोर है जबकि चोर कौन थी, वो खुद, जबकि वो खुद ही उसकी उसके पैकेट से खा रही थी, चोर तो वो खुद ही थी। तो उल्टा वाइब्रेशंस, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई ना। उसी तरह एक उदाहरण दिखाते हैं, एक व्यक्ति होता है जिसको बस कंडक्टर की नौकरी मिलती है, पर एकदम ही पतला दुबला सा होता है, बहुत ही पतला दुबला सा। तो बस कंडक्टर की नौकरी जब मिलती है तो हर एक दिन एक पर्टिकुलर स्टॉप से एक मोटा ताजा बहुत तगड़ा हुआ सरदार जी बल्ले बल्ले करते हुए चढ़ता है और कहता है कि सरदार को किसी टिकट लेने की आवश्यकता नहीं है। और ये जो पतला दुबला सा कंडक्टर हो तो उसको हिम्मत भी नहीं होती उसके पास जाकर उससे पूछने की कि भाई टिकट दो। इतना वो तगड़ा होता है और रोज ऐसा होता है। फिर ये जो व्यक्ति होता है जो पतला दुबला कंडक्टर सोचता है कि ये मुझे बहुत धमकाता है, रोज चढ़ता है और बराबर एक स्टॉप पर चढ़ता है और दूसरे स्टॉप पर उतरता है और रोज टिकट बिल्कुल नहीं देता है। मैं क्या करूं इसका, कुछ तो करना पड़ेगा। पर वो इतना तगड़ा होता है, इतना बलशाली होता है कि इसकी हिम्मत नहीं होती उसके पास जाकर से पूछने की। सोचता है मैं जिम ज्वाइन करता हूं अभी, जिम जिमनेशियम, और 6 मास तक जिम ज्वाइन करता है और इतना वो भी थोड़ा सा तगड़ा बनता है, सब डाइट वगैरह इंक्रीज करके शक्तिशाली बनता है। और 6 मास के बाद उसके पास जाता है और फिर वो ध्यान से देखता है कि वो सरदार जी फिर आएगा। सरदार जी प्रवेश करता है और फिर चिल्लाता है बल्ले बल्ले और फिर कहता है कि सरदार को किसी टिकट लेने की आवश्यकता नहीं। वो उसके पास जाता है, कहा है टिकट कहाँ है? बोलते टिकट लेने की क्या जरूरत, मेरे पास पास है। मास उसकी कैसी अवस्था रही होगी कि कुछ भी करके इसको मुझे सबक सिखाना है, पाठ पढ़ाना है। बहुत धमकाता है, उल्टे इंप्रेशंस, मिसअंडरस्टैंडिंग। यदि आत्माओं के प्रति हमारे मन में इस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो किसी भी तल पर हो सकती है। ये तो हमने स्थूल उदाहरण दिया, किसी भी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग होगी तो हमारे वाइब्रेशंस उन तक नहीं पहुंचेंगे। तो सबसे पहला कारण बताया व्यर्थ। यदि हमारे मन में व्यर्थ है तो हमारे वाइब्रेशंस आत्माओं तक नहीं पहुंचेंगे। दूसरा कारण बताया मिसअंडरस्टैंडिंग। तीसरा संशय है सकाश देने में कि हमारे वाइब्रेशंस जा रहे हैं या नहीं जा रहे, सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो कहेंगे डाउट, सस्पिशन, डाउट है। अपने पर ही विश्वास नहीं है कि हम जो वाइब्रेशंस दे रहे हैं पता नहीं पहुंच रहे या नहीं पहुंच रहे या बीच में ही कहीं गुम हो रहे, तो संशय तीसरा कारण। चौथा कारण, हमारे वाइब्रेशंस आत्माओं तक नहीं पहुंच रहे, हम दे रहे हैं बीच में दीवार बनकर कुछ आ रहा है। चौथा स्वार्थ है। और हद, यदि हद में है तो संडे की मुरली, नंबर 1 तकदीरवान आत्माओं की निशानियां, नंबर 1 तकदीरवान आत्माओं की निशानियां, नंबर 7 हद में दुख है। बेहद का परिवार, बेहद का रूहानी स्नेह, बेहद का ज्ञान, बेहद का संबंध, बेहद की वृत्ति जब है तो दुख स्वतः ही समाप्त हो जाता है। यदि हदों में है, मन छोटे तल पर है, सकाश बेहद की सेवा है, बेहद को हद में ला लिया अगर, किसी भी रीति से हो सकता है वो हद, तो हमारी सकाश नहीं पहुंचेगी। वो हद में फिर स्वार्थ भी आ सकता है, हमारा स्वार्थ है उसके पीछे। जैसे उस दिन इंदु बहन ने सुनाया था ना, यहाँ पर दादी आ गई कमरे में, कहा क्या कर रहे हो, कह रहे दादी हमारे पास जगह नहीं है, योग कर रहे हैं जगह मिल जाए। दादी ने कहा टाइम वेस्ट, किस लिए योग कर रहे थे बहने, लंदन की बात है कि जगह मिल जाए। दादी ने कहा था अपने योग को इसके लिए वेस्ट मत करो, वो जो भी हो। दादी ने सुनाया था ना उस दिन इंदु बहन ने, यहाँ पर हमारी सकाश की जो सेवा उसमें स्वार्थ ना हो, हद ना हो, बेहद की हो, जिसमें बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल, फॉर द गुड ऑफ ऑल, फॉर द बेनिफिक्शन ऑफ द एंटायर वर्ल्ड, सो दैट द एंटायर वर्ल्ड शुड बेनिफिट, नॉट जस्ट 1 पर्सन, एक व्यक्ति नहीं, सारा विश्व, सारा जगत, स्वामी विवेकानंद ने अपने एक भाषण में कहा है एक जगह, माय इंटरेस्ट आर नॉट इंडियन बट इंटरनेशनल, मेरी रुचि केवल भारत में नहीं, मेरा स्वार्थ केवल भारत के लिए नहीं, परंतु मेरा जो कार्य है वो इंटरनेशनल है, वैश्विक है। तो सार्वभौमिक भावना, कल्याण की वह भावना, समस्त मानव की सेवा ही माधव सेवा है, बहुभाव। तो बेहद में अगर हम, हद में यदि है तो वो भी एक दीवार है। पांचवा, सूक्ष्म द्वेष और सूक्ष्म ईर्ष्या। सूक्ष्म द्वेष और आत्माओं के प्रति सूक्ष्म ईर्ष्या है मन में, इतनी सूक्ष्म है भी हमें ही पता नहीं। यदि मन में सूक्ष्म घृणा है किसी के प्रति और हम सोच रहे उसको सकाश दे, सकाश हमारी नहीं पहुंचेगी। यदि मन में ईर्ष्या है, कोई सफल हो रहा है, बहुत आगे बढ़ रहा है, तब भी चाहे लौकिक रीति, लौकिक में आगे बढ़ रहा है, हम चाहते हैं वो अध्यात्म में आ जाए, पर उसकी जो लौकिक सफलता है उसके प्रति मन में ईर्ष्या है, घृणा भाव है उस आत्मा के प्रति, तो हमारी सकाश नहीं पहुंच सकती। तो पांचवा है सूक्ष्म घृणा, सूक्ष्म ईर्ष्या, सूक्ष्म द्वेष का भाव, जहां पर है वहां पर हमारी सकाश नहीं पहुंच सकती। छठवा, लगाओ। ये एक थोड़ा अलग प्रकार का है, लगाओ। जिन आत्माओं से हमारा बहुत लगाव है और सोच रहे हैं उनको सकाश दे, माता सोचती है मेरा पति ज्ञान में आ जाए, उसकी बुद्धि का ताला खुल जाए। आज की मुरली में भी है, मैं जानी जाननहार हूं, मैं, हम विकार में जाते हैं, आप तो जानते हो, मैं थोड़ी ना जानता हूं, बाबा ने कहा है। तो वो तो चलो दूसरी पॉइंट है, लगाव, आसक्ति, अनुरक्ति, अटैचमेंट, झुकाव, मोह यदि आत्माओं से है तो हमारी सकाश उन तक नहीं पहुंच सकती। क्या दूसरों तक ना? हाँ, दूसरों की बात चल रही है, जिससे लगाव है उसकी को सकाश दे रहे, तो सकाश नहीं पहुंच सकती। सकाश देने की सेवा बेहद, बिना बेहद के वैराग्य के हो नहीं सकती, अव्यक्त महावाक्य है बाबा का। तो सबसे फर्स्ट स्टेप है कट कर देना है उस लगाव को, डिटैच हो जाना है मेंटली इमोशनली। इमोशनल अटैचमेंट इतना ज्यादा है और उसी का कल्याण हम करना चाहते, शायद हम ही बाधा है उसके ज्ञान में आने में, हम सोचते हैं ये ज्ञान में आ जाए, पर हमारा जो मोह है वो मोह ही बाधा है। जब ये मोह टूट जाएगा तब वो स्वतः ही आ जाएंगे। तो सूक्ष्म या गहरा लगाव, मोह, आसक्ति, अटैचमेंट, ये दीवार है, ये बादल है, हमारी सकाश आत्माओं तक नहीं पहुंचती। आठवां, उसको कहेंगे सुपियोरिटी कॉम्प्लेक्स। सुपियोरिटी कॉम्प्लेक्स चाहे जहां हम अपने आप को बहुत ऊंच समझते, उच्चता ग्रंथि, और दूसरों को एकदम ही शूद्र समझते, नीच समझते, छोटा समझते, और फिर चले उनको सकाश देने। रहम भाव होना वो अलग है, परंतु हम अपने आप को बहुत ही बड़ा समझते हैं, अलग रीति से देहभान है जिसमें, उस तरह हम बड़े हैं, ये तो बहुत छोटे हैं, तब भी हमारी सकाश उन तक नहीं पहुंच सकती। तो आठवां है सुपियोरिटी कॉम्प्लेक्स। नौवां है इन्फियोरिटी कॉम्प्लेक्स, हीनता ग्रंथि, हीनता का भाव, हीन भावना। हम अपने आप को बहुत ही छोटा समझते हैं, जबकि भगवान ने इतने बड़े बड़े सम्मान दिए हैं, परंतु समझते हम ये नहीं कर सकेंगे, हमसे ये नहीं होता, हमसे पुरुषार्थ नहीं होता, सकाश देना तो हमारे बस का काम नहीं, जिनको देना है देते रहो। पुरुषार्थ इज नॉट माई कप ऑफ टी, पुरुषार्थ हमारा काम नहीं है। जिनको संपूर्ण बनना है, बाप समान बनना है, बहुत भारी काम है फरिश्ता बनना, जिनको बनना है बने, हम उनके लिए शुभ भावना रखते हैं। करो, हमसे तो नहीं होता है। मुरली पढ़ना भी बड़ा मुश्किल लगता है, समझना तो दूर की बात। तो हीन भाव ज्ञान के प्रति, भाषा के प्रति, यह हिंदी तो हमको समझ में नहीं आती है, बहुत मुश्किल है भाषा, सारी मुरलियां हिंदी में है। तवा तू माउथ का सुख हमारे भाग्य में नहीं है, जिसको लेना है ले ला, हम सूखी रोटी खाएंगे। हीन भावना है, भाषा, ज्ञान, पुरुषार्थ, सेवा, हमारी तो बस यही सेवा है, स्थूल सेवा, यहाँ की वस्तु वहां रखो, वहां की वस्तु वहां रखो, ये बुद्धि वाले काम हमको मत दो, जिसमें बुद्धि का प्रयोग किया जाता है वो काम हमें नहीं चाहिए। ये होमवर्क वाला सिस्टम, हाँ क्या करो, ये होमवर्क बहुत डेंजरस चीज है। चुपचाप आके बैठो, आराम से, शांति से सुनते रहो, अमृत धारा बह रही है, वाह, आनंद ही आनंद की वर्षा हो रही है, कितना अच्छा लगता है, मधुर कनरस बह रहा है, परमात्मा प्रेम में मन मगन हो रहा है। और जैसे ही कहा कि ये करो, ईश्वरीय सुख, अतीन्द्रिय सुख का आनंद, संगम युग की मौज कहां खो जाती है पता ही नहीं चलता है। एक स्ट्रेस, एक टेंशन, एक तनाव, नींद फिट जाना, तो हीन भावना, हम नहीं कर पाएंगे, हम नहीं बोल सकेंगे। कुछ दिन पहले मुरलियों में था ना, प्रैक्टिस करो बोलने की, था शायद अभी अभी था, स्पष्ट और मधुर बोल कैसे हो, स्पष्ट और मधुर, हिम्मत और स्पिरिट, तो इंफियोरिटी कॉम्प्लेक्स। नया काम हमको कुछ मत देना, जो हमारा चल रहा है इतने सालों से कर रहे बस वही ठीक है, नया दे दिया कि डिस्टर्बेंस, उपद्रव चलो मन में। तो परंतु मन ट्रेन तभी होता है जब उसे चैलेंजेस दिए जाते हैं, न्यू चैलेंजेस देना होता है। अमेरिका का एक बहुत प्रसिद्ध एस्ट्रोनॉट जॉन ग्लेन है, उसने पहला अमेरिका का व्यक्ति है वो जिसने धरती की 3 बार प्रदक्षिणा की, थ्राइस मेड द ऑर्बिट ऑफ अर्थ। तो उसने लिखा है, उसका एक स्लोगन था व्हाई नॉट, क्यों नहीं, उसका स्लोगन हमेशा जो उसने जीवन भर याद रखा वो था व्हाई नॉट। व्हाई नॉट अर्थात इसने किया तो मैं क्यों नहीं कर सकता, वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया तो मैं क्यों नहीं कर सकता, हर चीज में उसने ये याद रखा। जॉन ग्लेन, फर्स्ट अमेरिकन टू ऑर्बिट द अर्थ थ्राइस, 3 बार धरती की प्रदक्षिणा की, तो व्हाई नॉट, वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता, अगर ब्रह्मा संपूर्ण बन सकता है तो मैं क्यों नहीं बन सकता, अगर मम्मा बन सकती है तो मैं क्यों नहीं बन सकता, अगर दादी ने वो करके दिखाया तो मैं क्यों नहीं कर सकता, यदि दूसरा व्यक्ति कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, व्हाई नॉट मी, व्हाई नॉट, क्यों नहीं, कुछ भी हो सकता है। उस दिन दादी जानकी की किताब वो पढ़ रहे थे ना, उसमें क्या लिखा था कि अगर दादी ने कहा है, अगर ऐसी महिला जो क्या, जो इंग्लिश नहीं जानती, जो इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं है, जो इतनी गरीब जगह से आई है, जो जिसके पास पैसे भी नहीं थे, वो महिला यदि इंग्लैंड में ऐसे घर बना सकती है और उसमें रह सकती है, देन एवरीथिंग इज पॉसिबल। अगर वो हो सकता है तो सब हो सकता है, तो व्हाई नॉट। ये जो इनफियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, इट इज लाइक रस्ट। रस्ट होता है ना, जंक। कैसे जंक लगती है तो अंदर ही अंदर खा लेता है, करोड़ करोजन होता है। उसी तरह इनफियोरिटी कॉम्प्लेक्स भी रस्ट की तरह खा जाता है आत्मा को। इसके लिए हमेशा कहो व्हाई नॉट, मैं क्यों नहीं कर सकता, ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। ऐसा कुछ नहीं जो मैं नहीं कर सकता। इम्पॉसिबल इज अ वर्ड फाउंड इन द डिक्शनरी ऑफ फूल्स। असंभव शब्द मूर्खों की शब्दकोश डिक्शनरी में है, नेपोलियन ने कहा है। मेरे लिए असंभव कुछ भी नहीं है। बिफोर मी माउंटेन्स विल क्रम्बल अप, आई विल ड्रिंक द एंटायर ओशन। विवेकानंद ने कहीं कहा है, सारा के सारा ये जो समुन्द्र दिख रहा है पी जाऊंगा, इतनी ऊर्जा मुझ में है। मेरे सामने ये जो पर्वत दिख रहे हैं बड़े बड़े, धराशायी हो जाएंगे। ऐसी प्रचंड ऊर्जा, ऐसी प्रकांड ऊर्जा मैं अपने अंदर धारण किए हुए। क्राइस्ट बुद्धा एंड कृष्णा आर बट द वेव्स ऑफ इन्फिनिट कॉन्शियसनेस दैट आई एम। क्राइस्ट बुद्धा एंड कृष्णा आर बट द वेव्स ऑफ इन्फिनिट कॉन्शियसनेस दैट आई एम। ये केवल लहरें हैं, क्राइस्ट बुद्ध और कृष्ण, उस चेतना की जो मैं हूं। मुझ में ऐसा कुछ भी नहीं जो उनसे कम है। मेरी प्रतिभा आध्यात्मिक उतनी ही है जितनी की इस संसार का जो भी स्पिरिचुअल जायंट होगा, अध्यात्म के क्षेत्र में जो भी महान आत्माएं थी, उन सब की है। उनमें और मुझ में भेद नहीं। जैसे उदाहरण है चंद्रमा, एक बकेट है जिसमें पानी है, उसमें उसका प्रतिबिंब वैसा ही है। एक नकी झील है, उसमें भी उसका प्रतिबिंब वैसे ही है। एक तो समुन्दर है, उसमें भी वो प्रतिबिंब उतना ही है। अध्यात्म के सूर्य का प्रतिबिंब सभी घटों में, सभी घटाकाश में वैसा ही प्रतिबिंबित है। वह अध्यात्म प्रतिभा हर आत्मा में उतनी ही है, कहीं से लानी नहीं है, केवल थका हुआ है। मल विक्षेप आवरण, मल को हटाना, विक्षेप को हटाना, आवरण को हटाना। और वो सूर्य तो वहां है ही, सोना तो वहां ही है, मिट्टी को हटाना है। तो हर आत्मा में इतनी ऊर्जा है। तो इन्फियोरिटी कॉम्प्लेक्स, नौवा पॉइंट, सेल्फ विक्टिमाइजेशन, खुद को दोषी ठहराना हर चीज में, खुद को आत्म ग्लानी तो नहीं कहेंगे उसमें, उसके लिए शब्द सेल्फ विक्टिमाइजेशन के लिए हिंदी शब्द, स्वयं को स्वयं प्रताड़ित करना, सेल्फ अब्यूज करना, आत्मग्लानी अपराध भावना हो जाता है। सेल्फ विक्टिमाइजेशन, स्वयं स्वयं को दोषी मानना, स्वयं स्वयं को दोषी, जो भी हो गया अपने को दोषी ठहराना, ये मेरे वजह से हुआ है, मैं नहीं होता तो शायद ये ठीक होता। हर चीज में स्वयं को दोषी ठहराना, हर चीज में मेरी गलती है, मेरा दोष है, मेरी वजह से ये हुआ है, और दुखी हो जाना, पेन एब्जॉर्ब करना। एक है पेन एब्जॉर्प्शन, एक है सेल्फ विक्टिमाइजेशन। जो बताया था ना निखिलेश भाई, तीर अपनी तरफ, धनुष बाण है, तीर अपनी तरफ है, अपनी छाती में बांध और फिर रोना और दुखी होना, उदास होना, हर चीज में, हर परिस्थिति में, हर जगह पर स्वयं को ही दोषी मानना, सेल्फ को विक्टिमाइज करना, ये जो भाव है, ऐसी आत्मा कभी भी समान के विरुद्ध है। एक्चुअली ये भी क्या कहेंगे इसको, विकार है एक, सेल्फ विक्टिमाइजेशन। लोग इसे विकार, भक्ति में तो ये तो महान माना जाता है, हम तो दास के दास, दासानुदास, भगवान का जो दास है ना उसके भी हम दास है, दासानुदास, परंतु ज्ञान में नहीं। बाबा ने ये नहीं सिखाया हमें, सेल्फ विक्टिमाइज करना नहीं सिखाया है। बाबा ने तो यहां तक कहा है कि पश्चाताप में भी समय में नहीं गवाओ। ये जब सेल्फ विक्टिमाइजेशन का बादल है, सेल्फ विक्टिमाइजेशन की दीवार है, हमारी सकाश कैसे जाएगी आत्माओं तक। और लास्ट टेंथ, लिस्ट तो लंबी हो सकती है, पूरा करने के लिए दस से पर पूरा करते हैं, उसी में हम ऐड कर सकते हैं गिल्ट, अपराध भाव। इन दोनों में थोड़ा अंतर है, पहला है स्वयं को दोषी ठहराना और दसवां है गिल्ट कॉम्प्लेक्स। पाप हुआ है मुझसे और उस पाप से मैं बाहर ही नहीं निकल पा रहा हूं, वो भाव छूट ही नहीं रहा है, बना हुआ है कि मेरे से गलती हुई, मेरे से गलती हुई, मेरे से गलती हुई। अरे गलती हुई, खुद को तो माफ करो, कब तक स्वयं को दोष देते रहोगे और इस दुख में जियोगे? गिल्ट कॉम्प्लेक्स, अपराध भाव, बहुत बढ़िया, पाप मेरे से हुआ है। फ्रेंच नॉवेलिस्ट है मॉपसेंट, उसने एक नॉवेल लिखी है, यह किताब में एक आर्टिकल है द डायमंड नेकलेस, उस पर बहुत सारी हिंदी मूवी बनी हुई है, उसमें दिखाया एक महिला है, गरीब घर की है, उसका पति है और वो दोनों एक फंक्शन में उन्हें जाना होता है तो एक नेकलेस अपने पड़ोसी से लेती है, परंतु बहुत महंगा वो नेकलेस होता है। उस पर मूवीज बनी है, इंग्लिश मूवीज बनी है, हिंदी मूवीज बनी है। वो नेकलेस लेती है उस फंक्शन में जाने के लिए और फंक्शन में नेकलेस गुम हो जाता है। अब उसको लगता है ये नेकलेस मैं कैसे उसको वापस करूं, वापस तो करना है और डायमंड नेकलेस होता है, वापस तो करना है। गिल्ट भाव भर जाता है और बहुत जगह से दोनों पति पत्नी मिलके इतना कर्जा लेते, इतना कर्जा लेते और वो डायमंड नेकलेस बनाते और एक दिन वो वापस कर देते डायमंड नेकलेस। परंतु ये सारा करते समय एक गिल्ट भाव रहता है कि हमने वो नेकलेस गुमा दिया, हमसे गलती हो गई, तो वो अपराध भाव में जीते बहुत समय तक। और वो नेकलेस तो दे देते हैं, परंतु स्टोरी में टर्निंग पॉइंट ऐसा है कि 10 साल के बाद वो ये जो लोन लिया रहता है, कर्जा इतना सारा, इतने सारे दिन, गे डी मॉपसेंट ऑथर का नाम है, गे डी मॉपसेंट, तो वो जो कर्जा लिया है उसको चुकता करने में पूरी जिंदगी लग जाती है दोनों की, पति पत्नी की। और स्टोरी में टर्निंग पॉइंट तब आता है जब ये लोग 10-15-20 साल के बाद बूढ़े हो जाते हैं और अचानक वो महिला मिलती है जिससे उसने ये कर्जा, ये नेकलेस लिया था। वो कहती है आपको ये क्या हाल हो गया आपका, ऐसी दरिद्र अवस्था में कहां से पहुंच गई है? तो उसको वो सही कहानी सुनाती है कि आपसे हमने जो डायमंड नेकलेस लिया था वो हमसे गुम हो गया था, कर्जा लिया और उसके बाद में हमको ये करना पड़ा। तो वो महिला कहती थी अरे वो नेकलेस तो नकली था, जितना तुमने कर्जा लिया उसके तो वो नेकलेस ही नकली था, वो जो डायमंड नेकलेस था। ऐसी वो स्टोरी है। तो चलो ये तो दूसरा हमने खाली इसके लिए बताया, ये गिल्ट कॉम्प्लेक्स, दोषी भाव, अपराध भावना। अपराध भावना वाला जहां है वो ना तो पुरुषार्थ कर सकता, ना तो जीवन की मौज है, ना तो संगम युग का श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। तो ये 10 पॉइंट्स टोटल है, दीवार का काम करती है। अगर हमारे अंदर इनमें से कोई भी एक पॉइंट है, कोई भी एक बात है, चाहे वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो या कुछ भी इस तरह की, उस पर हमें काम करना है और ये काम हमें ही करना है, अकेले ही देखना है कहां है, क्योंकि दूसरा कहां से बताएगा। जितना पेशेंट अपने बारे में खुद जानता है डॉक्टर नहीं जानता है, पेशेंट को बताए मेरी बीमारी क्या क्या है। डॉक्टर तो पूछता है कितने बजे खाना खाते हो, भूख लगती है कि नहीं लगती है, जो भी, उससे ज्यादा तो हम स्वयं को अपने आप को जानते हैं। पहले अपने आप को जाने मेरी क्या बीमारी है, इन 10 पॉइंट्स जो गिनाए इनमें से कौन सी बात मेरे अंदर है, उसको, इस दीवार को तोड़ दो, ये बादल छट जाए, बादलों को हटा दो, दीवारों को तोड़ दो, ब्रेक द वॉल, रिमूव द क्लाउड्स, डिस्पेल द डार्कनेस एंड देन द रेज विल फ्लो। ओम शांति।